एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मैल्कम ग्लैडवेल की टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स।
हाँ, यानी अजनबियों से बातचीत।
और ये किताब ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है कि हम उन लोगों को समझने में इतने इतने खराब क्यों हैं जिन्हें हम जानते नहीं।
सही बात है, और हम अक्सर गलत समझ लेते हैं, है ना?
बिल्कुल।
और ये गलतियां कभी कभी कितनी भारी पड़ सकती हैं।
हाँ, आज की दुनिया में तो खास तौर पर।
सोचिए, हम कितने नए लोगों से मिलते हैं रोज,
चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफिस में नए लोग हों।
बिल्कुल, और उन्हें ठीक से न समझ पाना। ग्लैडवेल दिखाते हैं कि ये छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है, ये वाकई बड़ी दुखद घटनाओं की वजह बन सकती है।
ये किताब सच में आईना दिखाती है कि हमारी ये चूकें कितनी आम हैं और कितनी खतरनाक भी हो सकती हैं।
तो चलें शुरू करें, देखें कि ग्लैडवेल क्या कहते हैं इस बारे में।
हाँ बिल्कुल, पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, मैल्कम ग्लैडवेल।
हाँ, मैल्कम ग्लैडवेल कनाडा के हैं, बहुत जाने माने पत्रकार, लेखक, स्पीकर।
1996 से द न्यूयॉर्कर के लिए लिख रहे हैं, और उनकी किताबें तो खैर।
अरे हाँ, द टिपिंग पॉइंट, ब्लिंक, आउटलायर्स सब बेस्ट सेलर रही हैं।
उनकी खासियत यही है कि वो मुश्किल विषयों को, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, उनको बड़ी दिलचस्प कहानियों से जोड़ के समझाते हैं।
बिल्कुल, वो खुद लैब में रिसर्च नहीं करते हैं।
नहीं,
वो अलग अलग रिसर्च घटनाओं को लेते हैं और उनको जोड़कर हमारे व्यवहार के पैटर्न दिखाते हैं जो छुपे हुए होते हैं।
और टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स में भी यही स्टाइल है।
हाँ बिल्कुल, वो हिटलर से हुई चेम्बरलैन की मीटिंग से लेकर अमेरिका में सैंड्रा ब्लैंड के साथ जो दुखद घटना हुई,
वहां तक
कई किस्सों को एक साथ लाते हैं, ये दिखाने के लिए कि अजनबियों को गलत समझने में हम सब एक जैसी गलतियां करते हैं, है ना?
हाँ, और एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी, उनका अपना बैकग्राउंड।
अच्छा,
वो मिश्रित जाति के हैं और कई जगह एक बाहरी की तरह रहे हैं।
हाँ,
तो शायद ये अनुभव उन्हें एक अलग नजरिया देता है इस विषय पर।
ये बात तो है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, एक तरह का वेकू अनुभव भी है।
बिल्कुल। तो फिर किताब का मेन आइडिया क्या है, सार क्या है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स का?
देखिए, किताब का सार ये है कि हम अजनबियों को समझने के लिए जिन तरीकों पर, जिन धारणाओं पर भरोसा करते हैं, वो असल में काफी दोषपूर्ण हैं, उनमें गहरी खामियां हैं।
अच्छा,
जैसे
कौन सी धारणा है?
जैसे हम मानकर चलते हैं कि भाई सामने वाला इंसान सच्ची बोल रहा होगा,
हाँ ये तो होता है,
या फिर उसके चेहरे के भाव देखकर, उसके हाव भाव से हम समझ जाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है।
डिफॉल्ट सेटिंग कह सकते हैं इसे।
हाँ बिल्कुल, ग्लैडवेल यही कहते हैं कि ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, और ये दोस्तों परिवार के साथ शायद चल भी जाए,
पर अजनबियों के साथ,
अजनबियों के मामले में ये हमें बुरी तरह फटका सकती हैं, खतरनाक साबित हो सकती हैं।
तो क्या ये किताब कोई गाइड नहीं है कि अजनबियों को कैसे पढ़ें?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की चेतावनी है। ग्लैडवेल ये नहीं सिखा रहे कि बेहतर कैसे बने, वो कह रहे हैं कि अपने जजमेंट पर थोड़ा कम भरोसा करो
और ज्यादा सावधानी, ज्यादा विनम्रता बरतो।
एग्जैक्टली, और वो अपनी बात तीन बड़े आइडियाज के जरिए समझाते हैं।
हाँ, कौन से हैं वो तीन आइडियाज?
पहला है डिफॉल्ट टू ट्रूथ, सच मान लेने की हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
ओके, दूसरा?
दूसरा है ट्रांसपेरेंसी का भ्रम, यानी ये सोचना कि लोगों के अंदर के एहसास उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार में साफ झलकते हैं।
पारदर्शिता का भ्रम। और तीसरा?
तीसरा है कपलिंग, ये आइडिया कि व्यवहार किसी इंसान से ज्यादा उसके हालात, उसके संदर्भ से जुड़ा होता है।
डिफॉल्ट ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी का भ्रम और कपलिंग।
ठीक है,
और इन तीनों को समझाने के लिए वो कमाल की कहानियां इस्तेमाल करते हैं, बर्नी मैडॉफ का वो बड़ा घोटाला।
हाँ सुना है,
अमांडा नॉक्स का केस, क्यूबा की जासूस एना मोंटेस।
एना मोंटेस
वो कौन थी?
वो अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में थी और सालों तक क्यूबा के लिए जासूसी करती रहीं, किसी को पता नहीं चला।
अरे बाप रे,
यहाँ तक कि कवयित्री सिल्विया प्लाथ की आत्महत्या के पीछे के संदर्भ का भी विश्लेषण है।
अच्छा, तो ये कहानियां सिर्फ उदाहरण नहीं है?
नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम दुनिया को, लोगों को कैसे देखते हैं।
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहला आइडिया डिफॉल्ट टू ट्रूथ, सच मान लेना।
हाँ,
इसका मतलब है कि हम, इंसान, हम स्वाभाविक रूप से ये मानकर चलते हैं कि लोग सच बोल रहे हैं, और ग्लैडवेल कहते हैं कि ये कोई बेवकूफी नहीं है, है ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, वो जोर देते हैं कि ये समाज चलाने के लिए जरूरी है।
हाँ सोचिए, अगर हम हर किसी पर शक करने लगें, बैंक में, डॉक्टर के पास, रास्ते में,
तो जिंदगी चली नहीं पाई ही। भरोसा करना जरूरी है, ये एक तरह का सामाजिक गोंद है।
सही बात है।
लेकिन
हाँ,
लेकिन इसी भरोसे का, इसी डिफॉल्ट सेटिंग का फायदा उठाते हैं धोखेबाज।
जैसे वो पोंजी स्कीम वाले
या जासूस एना मोंटेस का किस्सा सोचिए। वो पेंटागन में क्यूबा पर टॉप एनालिस्ट थी
और 17 साल तक जासूसी करती रहीं।
हाँ, और उनके साथ काम करने वाले जो खुद इंटेलिजेंस एक्सपर्ट थे, उन्हें शक तक नहीं हुआ।
क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि वो अपनी थी, भरोसेमंद दिखती थी। हमारी डिफॉल्ट सेटिंग उन्हें सच मानने की थी।
और बर्नी मैडॉफ का भी यही मामला था।
बिल्कुल, इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, लोग उसकी बातों में इसलिए आए क्योंकि वो अमीर था, कामयाब था, अंधविश्वास से भरा दिखता था।
तो हमारा दिमाग तब तक सच मानता है जब तक कोई बहुत पक्का सबूत ना मिले झूठ का।
हाँ, एक मनोवैज्ञानिक है टिम लेविन, उनकी रिसर्च यही दिखाती है। हम झूठ पकड़ने में सिर्फ करीब 54% ही सफल होते हैं।
54%?
ये तो बस तुक्का लगाने जैसा हुआ।
हाँ, मतलब लगभग चांस के बराबर। और ये हमारी कमी नहीं, ये हमारे सिस्टम का, हमारे समाज के चलने का तरीका है।
ठीक है, ये तो हुआ डिफॉल्ट टू ट्रूथ। अब दूसरा आइडिया, ट्रांसपेरेंसी का भ्रम।
हाँ, पारदर्शिता का भ्रम, ये हमारी एक और बहुत गहरी गलतफहमी है
कि हम लोगों के चेहरे देखकर उनके हाव भाव से जान सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है।
एग्जैक्टली, हमें लगता है कोई दुखी है तो रोएगा, झूठ बोल रहा है तो नजरें चुराएगा। और टीवी फिल्में इसे और पक्का करती हैं। एक्टर्स तो बहुत साफ दिखाते हैं अपनी भावनाएं।
हाँ, वो तो है।
लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं असल जिंदगी में लोग खुली किताबें नहीं होते, ये एक मिथक है।
और इसका कोई नुकसानदेह उदाहरण भी देते हैं वो। हाँ, अमांडा नॉक्स का केस, वो इटली वाला मामला।
हाँ हाँ याद है, उस पर रूममेट के मर्डर का चार्ज लगा था।
हाँ, और पुलिस और मीडिया को उसे दोषी मानने का एक बड़ा कारण लगा उसका अजीब व्यवहार।
अजीब मतलब?
मतलब गिरफ्तारी के बाद वो वैसी डरी हुई या रोती हुई नहीं दिखी जैसी लोगों को उम्मीद थी।
अच्छा,
तो क्योंकि उसका बाहरी बर्ताव लोगों की उम्मीदों से मेल नहीं खा रहा था।
लोगों ने मान लिया कि वो जरूर कुछ छुपा रही है, वही कातिल है।
हाँ, ग्लैडवेल समझाते हैं कि भाई, भावनाओं को जाहिर करने का कोई यूनिवर्सल तरीका होता ही नहीं है। कुछ लोग कम दिखाते हैं, कुछ अलग तरह से दिखाते हैं। उन्हें ट्रांसपेरेंट न होने की सजा देना तो भयानक अन्याय है।
और क्या एक्सपर्ट्स जैसे पुलिस या जज वो बेहतर होते हैं चेहरा पढ़ने में?
नहीं, स्टडीज यही दिखाती हैं, वो भी आम लोगों जितने, कह सकते हैं, खराब होते हैं चेहरा पढ़कर झूठ पकड़ने में।
बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है।
बिल्कुल।
और तीसरा कॉन्सेप्ट था कपलिंग।
हाँ, कपलिंग यानी संदर्भ का महत्व।
इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि किसी के व्यवहार को समझने के लिए सिर्फ उस इंसान को देखना काफी नहीं है।
तो किसे देखें?
उस जगह को, उन हालात को समझना जरूरी है जिनसे वो व्यवहार जुड़ा हुआ है। व्यवहार अकेले नहीं होता, वो अपने माहौल से कपल्ड होता है, यानी कसकर जुड़ा होता है।
कोई उदाहरण?
हाँ, वो कैनसास सिटी पुलिस के एक प्रयोग का जिक्र करते हैं। पुलिस ने देखा कि शहर के ज्यादातर अपराध कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही हो रहे थे।
अच्छा।
हाँ, कुछ खास सड़कें, कुछ चौराहे। तो अपराध सिर्फ बुरे लोगों का काम नहीं था, वो उन खास जगहों से जुड़ा था। जब उन जगहों पर पुलिसिंग बढ़ाई गई तो अपराध कम हो गया।
मतलब व्यवहार बदलने के लिए इंसान को नहीं, माहौल को बदला।
हाँ, कई बार संदर्भ बदलना ज्यादा असरदार होता है।
और सिल्विया प्लाथ वाला उदाहरण?
वो थोड़ा संवेदनशील है। हाँ, ग्लैडवेल ये नहीं कहते कि डिप्रेशन वजह नहीं था, लेकिन वो जोर देते हैं कि उनकी मौत उस समय और जगह के संदर्भ से भी जुड़ी थी।
कैसे?
1963 का लंदन। तब घरों में टाउन गैस वाले ओवन आम थे जिनमें जहरीली गैस होती थी। वो आत्महत्या का एक आसान और घातक जरिया थे। जब बाद में ब्रिटेन में गैस बदली गई, नेचुरल गैस आई,
तो
आत्महत्या की दर, खासकर इस तरीके से, वो कम हो गई।
तो ये दिखाता है कि कितना भी निजी लगने वाला व्यवहार भी बाहरी हालात से कितना जुड़ा होता है।
बिल्कुल, कस की जुड़ा होता है।
और फिर ग्लैडवेल इन तीनों आइडियाज को, डिफॉल्ट टू ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी, कपलिंग, इनको सैंड्रा ब्लैंड के केस से जोड़ते हैं।
हाँ, वो उस दुखद घटना का विश्लेषण करते हैं इन तीनों के जरिए।
एक मामूली ट्रैफिक स्टॉप इतना भयानक कैसे बन गया?
ऑफिसर ने ब्लैंड के व्यवहार को, जो शायद घबराहट या गुस्सा था, उसे ट्रांसपेरेंसी के भ्रम के तहत खतरे का संकेत मान लिया। उसने डिफॉल्ट ट्रूथ के बजाय शक को चुना, सच नहीं माना।
और कपलिंग, संदर्भ,
उसने ब्लैंड के संदर्भ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि अमेरिका में एक अश्वेत महिला होने के नाते पुलिस के साथ उसके अनुभव, उसकी आशंकाएं क्या हो सकती हैं। वो उस संदर्भ को समझ ही नहीं पाया। ये अजनबियों से संवाद में पूरी तरह फेल होने का एक बहुत ही दुखद उदाहरण था।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं?
पहली तो यही कि डिफॉल्ट टू ट्रूथ यानी सच मानना, ये हमारी सामाजिक जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चलेगा।
लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हैं।
बिल्कुल। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी का भ्रम सचमुच एक भ्रम है, एक मिथक।
लोग खुली किताबें नहीं होते।
नहीं होते, और उनके हाव भाव से मन का हाल जानना बहुत मुश्किल है। भारत में ही सोचिए, हम कितनी जल्दी राय बना लेते हैं ना।
हाँ, किसी दुकानदार, नए पड़ोसी, सहकर्मी के बारे में सिर्फ उनके दिखने के आधार पर। ये किताब उस पर सवाल उठाती है।
तीसरी बात, कपलिंग। संदर्भ ही सब कुछ है।
किसी के व्यवहार को समझने के लिए उसके हालात समझना जरूरी है, सिर्फ उसके चरित्र पर फैसला सुनाना नहीं।
हाँ, जब हम अखबार में अपराध की खबर पढ़ते हैं तो अक्सर अपराधी को बुरा मान लेते हैं,
पर उन परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचते जो शायद उसे वहां तक ले गई।
सही कहा। चौथी बात, अजनबियों से निपटने के हमारे कई मौजूदा तरीके, जैसे कुछ पुलिस तकनीकें या इंटरव्यू के तरीके,
वो शायद उतने कारगर नहीं है जितना हम सोचते हैं।
हाँ, क्योंकि वो इन्हीं गलत धारणाओं पर आधारित हो सकते हैं, चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं।
और सबसे अहम बात,
विनम्रता और सावधानी। ये स्वीकार करना कि अजनबियों को समझने की हमारी क्षमता सीमित है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो याद रह जाती हैं, कुछ कोट्स।
हाँ, कई हैं, अगर उनके मुख्य विचारों को अपने शब्दों में कहें तो।
पहला शायद ये होगा, हम लोगों पर भरोसा करके मूर्ख नहीं बनते, ऐसा करके हम सभ्य बनते हैं। सच मानने की प्रवृत्ति कमजोरी नहीं, समाज चलाने की कीमत है।
हाँ, ये भरोसे की अहमियत और उसके जोखिम दोनों बताता है।
दूसरा
कुछ ऐसा, हम सोचते हैं चेहरा और व्यवहार आत्मा की खिड़की है, ये ट्रांसपेरेंसी का भ्रम है, एक मिथ। अजनबियों को पढ़ना हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है।
ये सीधे हमारे जजमेंट पे सवाल है।
बिल्कुल।
तीसरा,
अपराध को समझने के लिए सिर्फ अपराधी को मत देखो, उस गली के नुक्कड़ को समझो जहां वो हुआ। व्यवहार हमेशा अपने संदर्भ से जुड़ा होता है।
ये गहरी बात है, सतह से नीचे देखने की बात।
और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी संदेश है,
हाँ वो ये कि
अजनबियों से बात करने का सही तरीका आत्मविश्वास नहीं बल्कि सावधानी और विनम्रता है। ये मानना कि सामने वाला एक पहेली है जिसे शायद आप कभी पूरी तरह हल न कर पाए।
मतलब अनिश्चितता को स्वीकार करना।
हाँ, अपनी सीमाओं को जानना।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकलता है, कैसे लागू करें इन्हें?
दफ्तर में सोचिए, जैसे किसी को नौकरी पे रखते समय।
हाँ,
इंटरव्यू में कोई कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है या नर्वस, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय
उसके काम के सबूत देखें, पिछला रिकॉर्ड, स्किल्स।
हाँ, और मैनेजर को भी किसी के चेहरे के भाव से नतीजे नहीं निकालने चाहिए कि वो खुश है या दुखी, बेहतर है पूछ लिया जाए।
सही है। और सामाजिक जीवन में
हम शायद दूसरों के प्रति ज्यादा सहनशील बन सकते हैं, अगर कोई अजनबी रूखा लगे या अजीब लगे
तो तुरंत उसे जज ना करें।
हाँ, सोचें कि शायद हम पूरी कहानी नहीं जानते, हो सकता है उसका दिन बुरा बीता हो या वो किसी और तनाव में हो। भारत में तो वैसे भी इतनी विविधता है, लोगों के व्यवहार के तरीके बहुत अलग होते हैं।
और एक नागरिक के तौर पर
ये हमें पुलिस और न्याय व्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या सिर्फ हाव भाव के आधार पर किसी पर शक करना या उसे दोषी मान लेना सही है?
हाँ, मेगा ट्रायल में भी यही होता है अक्सर, किसी को संवेदनहीन कह दिया जाता है क्योंकि वो कैमरे पर रोया नहीं।
हाँ, हमें इस ट्रांसपेरेंसी के भ्रम से सावधान रहना चाहिए।
और निजी तौर पर
मुझे लगता है ये बौद्धिक विनम्रता सिखाता है।
मतलब
अपनी राय पर कम अड़ना, दूसरों को ज्यादा ध्यान से सुनना और ये मानना कि भाई हमारी समझ अधूरी हो सकती है,
ये स्वीकार करना कि शायद मैं गलत हूँ।
हाँ,
तो आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे जो सहज ज्ञान, हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं अजनबियों को लेकर, वो असल में कितने अविश्वसनीय हो सकते हैं। और ग्लैडवेल ये नहीं कहते कि आप ट्रेनिंग से बेहतर हो जाएंगे, वो कहते हैं अपनी सीमाओं को पहचानो और ज्यादा सावधान रहो। ये थोड़ा थोड़ा बेचैन करने वाला है, पर शायद सच के ज्यादा करीब है।
हाँ, ये बात तो है, और मेरे लिए कपलिंग वाला आइडिया बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला था।
अच्छा।
कि हमारे फैसले, हमारा व्यवहार कितने ज्यादा हमारे माहौल और संदर्भ से जुड़े हैं, न कि सिर्फ हमारी अंदरूनी शख्सियत से।
ये बात सही है।
ये हमें दूसरों के प्रति शायद ज्यादा हमदर्दी रखना सिखा सकता है। ये किताब वाकई आसान जवाब नहीं देती,
नहीं देती,
पर सवाल बहुत गहरे उठाती है। ये हमें कम जानने पर शायद ज्यादा समझने की ओर ले जाती है।
बिल्कुल, अजनबियों की दुनिया वाकई जटिल है, और उन्हें समझने की कोशिश में हमें अपने जजमेंट पर भरोसे से ज्यादा सावधानी और विनम्रता की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।